आज हम चर्चा करेंगे श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में और उनके जो प्रिय विग्रह हैं गोपाल जी, जो गदायगिरी जो ये स्थान है यहाँ निवास करते हैं। तो हम सब जानते हैं श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद के जो प्रिय शिष्य हैं उनमें से एक प्रमुख शिष्य हैं और वो विशेष रूप से पूरे जो इस्कॉन आंदोलन है उसमें सबसे परिचित हैं। उनकी जो कृष्ण कथा वर्णन शक्ति है, शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के जो द्वितीय विस्तार हैं बलराम, तो ऐसे बलराम जब भगवान की सेवा करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं लक्ष्मण के रूप में या फिर अनंत शेष के रूप में, और ऐसे अनंत शेष भगवान की सेवा दो प्रकार से करते हैं। एक एक प्रकार है उनकी कृष्ण सेवा का, एक तो है भगवान के लिए वो बेड बनते हैं और दूसरा है भगवान के लिए अम्ब्रेला। तो इस प्रकार से भगवान अनंत देव शेष उनकी सेवा करते हैं, सदैव उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान अनंत देव हैं वो और एक विशेष अपना विस्तार करते हैं और वो विशेष सेवा कृष्ण के लिए करते हैं, और वो है कृष्ण जब उठते हैं सुबह सुबह तब उनके गुणों का गान किया जाता है, या कृष्ण जब शाम को शयन करते हैं शयन करने से पूर्व अनंत देव उनके लीला चरित्र का गान करते हैं जिसको श्रवण करके कृष्ण आनंद अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही भगवान अनंत देव भगवत सेवा के लिए अपना एक विस्तार करते हैं और वो विस्तार जो शक्ति है उसको वो एक विशेष प्रकार का विस्तार शक्ति है अनंत देव की या भगवान की, उसको कहा गया है कृष्ण कथा वर्णन शक्ति। कि भगवान किसी ऐसे जीव को एक सामर्थ्य प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो विशेष जीव भगवान की जो कृष्ण कथा है उसको वर्णन करता है और उस कृष्ण कथा के माध्यम से पूरे जगत को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं कि राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवतम को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गंगा है वो तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, हाँ स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में होती हैं, पृथ्वी में जाह्नवी या गंगा के रूप में है, और वही जब पाताल में जाती हैं तो भोगवती के रूप में सबको पवित्र करती है। उसी प्रकार से कृष्ण कथा तीनों प्रकार के जीवों को पवित्र करती है, जो वक्ता है जो श्रोता है और जो जिज्ञासु है। तो सर्वाधिक पवित्र करने का सामर्थ्य कृष्ण कथा में है जो वक्ता को प्राप्त होता है। तो वास्तव में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जो हम उनसे परिचित हैं विशेष रूप से उनके पास जो कृष्ण कथा वर्णन करने की जो शक्ति है उससे सर्वाधिक हम सब लोग परिचित हैं या उनसे आकृष्ट हैं। तो ऐसे गौर गोविंद स्वामी महाराज का वर्णन अलग अलग वैष्णवों के द्वारा हमें सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, और हम कई समय से सुन रहे थे कि गदायगिरी गदायगिरी में जाना है गदायगिरी में जाना है। तो वास्तव में भगवान गोपाल गदायगिरी में निवास करते हैं और गोपाल का इस स्थान में आने का एकमेव कारण यही है। भगवान को जब नारद ने पूछा कि हे कृष्ण आप बताओ आपका निवास स्थान कहाँ है, तो भगवान ने कहा नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं तो ना वैकुंठ में निवास करता हूँ ना योगियों के हृदय में, जहाँ मेरे प्रेमी भक्त मेरे नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन करते हैं उस स्थान में मैं अपने गरुड़ को पीछे छोड़कर आके वहाँ बैठता हूँ दौड़ता हूँ, उस स्थान में मैं निवास करता हूँ। तो ऐसा ये गदायगिरी स्थान है, ये गदायगिरी स्थान ही है जहाँ कृष्ण अपने ब्रज को छोड़कर इस स्थान में आते हैं गोपाल के रूप में। और क्या भगवान गोपाल को कौन सी चीज आकृष्ट करती है? एक ही चीज गोपाल को, ब्रज गोपाल जी को ब्रज छोड़ने का, छोड़ने के लिए भगवान उस कारण से ब्रज को छोड़ते हैं। और गदायगिरी जो बिल्कुल रिमोट एरिया है ओडिशा का, रेयरली कोई व्यक्ति यहाँ आता है, लेकिन ऐसे स्थान के लिए भगवान गोपाल ब्रज को छोड़कर अपने जो प्रेमी भक्त हैं और प्रेमी भक्तों की जो विशेष सेवा है उस सेवा को स्वीकार करने के लिए गोपाल इस स्थान में निवास करते हैं। और वो सेवा क्या है? नाम संकीर्तन। तो गोपाल जो विग्रह हैं इनको कीर्तन प्रेमी विग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार से जगन्नाथ भक्त प्रेमी भगवान है, भक्त वत्सल देव है, तो उसी प्रकार से भगवान गोपाल जो यहाँ आकृष्ट होते हैं अपने जो महान भक्त हैं जिनसे एक इस सेवा को स्वीकार करने के लिए, जिस प्रकार से उस जो ग्रंथ है गोपाल जीव उसमें वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु लगभग 18 साल जगन्नाथपुरी या ओडिशा में रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के दो प्रकार के पार्षद हैं, एक है गौड़ियाज और एक है उड़ियाज, ओडिशा वासी और एक है बंगाल वासी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे जो मिदनापुर बंगाल में निवास करते थे 300 साल पहले, जिनका नाम था गदायगिरी। तो ऐसे गदायगिरी बंगाल से इस एरिया में आकर ब्रास के जो बर्तन हैं उनका व्यवसाय करते थे इस स्थान में। और ऐसे गदायगिरी बहुत अधिक अपने कीर्तन आदि के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ जब ओडिशा के इस एरिया में वो ब्रास के जो बर्तन है वो सेल किया करते थे और उनकी कीर्तन आदि को देखकर एक जो जमींदार है उन्होंने ये जो एरिया है, खेती का एरिया है, ये लैंड उन गदायगिरी को दे दी एक जमींदार ने। और तब इसी कारण से वो जो गदायगिरी डिवोटी हैं जिनके कारण वो यहाँ रहने लगे और जिनके कारण इस एरिया का नाम गदायगिरी पड़ा। और ऐसे गदायगिरी के एक पुत्र हुए जिनका नाम गोपालगिरी था। ऐसे गोपालगिरी क्योंकि इस गिरी फैमिली में एक विशेष चीज है, यहाँ इस परिवार में भगवत कृपा से जो भी पुत्र आदि जन्म लेता है वो स्वाभाविक रूप से उसके ब्लड में कीर्तन है। हाँ, क्योंकि गोपाल उनके कीर्तन सुनने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे अभी हम सुन रहे थे दामोदर गिरी जो प्रभु गा रहे थे अभी उनसे, तो वास्तव में गोपाल इनके विग्रह हैं। तो ये जो परिवार है ये कीर्तन परिवार है और आज तक उनके परिवार में ऐसा नहीं हुआ कि किसी कीर्तनिया ने जन्म नहीं लिया। हर पूरे परिवार में जो भी जन्म लेता है स्वाभाविक कीर्तन है। वैष्णवगण कहते हैं कि ऐसे नहीं कि वो कहाँ चले गए ट्रेनिंग लेने के लिए या सीख रहे हैं, नहीं, बचपन से ही उनके हृदय में या चित्त में या ब्लड में कीर्तन है। और जिसके कारण से भगवान गोपाल इस स्थान में निवास करने के लिए सदैव लालायित या उत्साहित रहते हैं। ऐसे गोपाल गिरी जो गदायगिरी के पुत्र थे और ये गिरी परिवार फेमस है ओडिशा में केवल कीर्तन के लिए। और कब से? जब श्यामानंद प्रभु इस एरिया में बहुत अधिक प्रचार प्रसार करते थे उस समय से ये जो कीर्तन करने के लिए ये जो फैमिली है फेमस है। ऐसे गोपाल गिरी जब यहाँ निवास करते थे तो गोपाल गिरी के हृदय में, गोपाल गिरी यहाँ केवल जगन्नाथ का जो विग्रह है उनकी पूजा किया करते थे जिनको ददी बमन कहा जाता है। ददी मीन्स ददी खाने वाले बच्चे, बामन मीन्स छोटा सा। तो भगवान जो ब्रज में ददी दही खाते हैं इसलिए उनको ददी बमन कहा जाता है। और जब भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बलराम के अलावा अकेले होते हैं तो उनको पतित पावन भी कहा जाता है, मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं। विशेष रूप से क्यों? पतितों पर अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। तो ऐसे गोपाल गिरी केवल ददी बमन या जगन्नाथ की सेवा करते थे और उनके हृदय में उस समय से एक इच्छा जागृत हुई। क्या? कि मैं जो बाल गोपाल है, ब्रज के कृष्ण है, त्रिभंग ललित रूप जिनका है, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, हाँ उनके लिए कीर्तन आदि करना चाहता हूँ, गोपाल कृष्ण की, हाँ जो ग्वाल बाल हैं, गौओं को चराते हैं, उनके पीछे पीछे गोवर्धन और बाल सारे वनों में भ्रमण करते हैं। तो ऐसी इच्छा गोपाल गिरी के हृदय में हो जाती है और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ये कई साधुओं से मिलते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृपा करो कि ये जो गोपाल है या भगवान का ये जो स्वरूप है जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, उनकी सेवा की प्राप्ति मुझे हो जाए। तो अलग अलग वैष्णवों से, साधुओं से मिलते थे, उनकी हृदय की इच्छा को वो प्रकट करते थे और पूजा करने की इच्छा को बताते थे। फिर इन्होंने इस स्थान को छोड़कर कुछ दिन के लिए जगन्नाथपुरी में निवास किया और जो भी वैष्णवगण जगन्नाथपुरी से वृंदावन आते जाते थे, साधु या वैष्णव, उनको यही इच्छा करते थे, यही प्रार्थना करते थे कि आप मेरे लिए कुछ विग्रह दे दो जिनकी मैं सेवा करूं, अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करूं। तो जब गोपालगिरी की ये तीव्र इच्छा उनके हृदय में थी तो भगवान छोटी सी इच्छा को देखते हैं, हाँ क्योंकि भगवान केवल जिस प्रकार से माधवेंद्रपुरी के लिए सेवा के लिए भगवान इंतजार करते हैं क्वालिफाइड जो सेवक हैं, प्रेमी भक्त जिनसे सेवा लेने के लिए जो विग्रह हैं, हाँ तो ऐसे गोपाल, ये जो गोपाल हैं छोटे से जो हैं प्रभुपाद के साथ राधा गोपाल जो, वो गोपाल वहाँ रहते थे, कहा केशी घाट में एक बाबा जी या सन्यासी के पास वो उनकी सेवा किया करते थे। और यहाँ गोपालगिरी ने भगवत सेवा के लिए तीव्र इच्छा लालसा अपने हृदय में जागृत की तो गोपाल वहां सुन रहे थे ब्रज में। तो ऐसे ब्रज में गोपाल ने कहा उस बाबा जी को कि आप मुझे ले चलो, उस सन्यासी को कहा आप मुझे ले चलो ओडिशा, ले चलो जगन्नाथपुरी, ले चलो जहां मेरे प्रिय भक्त गोपाल इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैं सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। तो सन्यासी ने सोचा कि ये क्या सपने, तो आता रहता है, ठीक है, उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया, उतना इतना गंभीर नहीं लिया गोपाल की बात को, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने गंभीर लिया था। माधवेंद्रपुरी को तीन बार भगवान ने स्वप्न आदेश दिया, तीनों बार माधवेंद्रपुरी भगवत सेवा के लिए तुरंत लग गए। तो ये सन्यासी ने सोचा और अपने रूटीन के कार्य करने लगे, केशी घाट में एक कुटिया में रहते थे, थोड़ी बहुत सेवा करते थे, बाकी समय ब्रज के वनों में भ्रमण करते थे, गोपाल को अपने गले में बांध के जो बिड़ बैग की तरह वही उनका अल्टर था, लेकिन गोपाल अभी इनसे सेवा लेना चाहता था गोपाल गिरी से। तो फिर भगवान देखते कि अरे मैंने इतनी बार कहा तो मुझे ले चलो ओडिशा जगन्नाथपुरी, तुम नहीं ले जा रहे हो। भगवान दूसरी बार सपने में आकर डंडा लेकर उनके जो पांव हैं इतना मारते, पिटाई करते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते तो उनको चलना नहीं आ रहा था, पांव ऐसे सूज गए थे, और उन्होंने कहा आप मुझे नहीं ले चलोगे जगन्नाथपुरी या ओडिशा तो आपकी खैरियत नहीं है, आपको रोना पड़ेगा दिन रात, इतना कष्ट दूंगा मैं। तो बेचारे तब तक उनके पांव की सूजन चली नहीं गई जब तक वो जगन्नाथपुरी नहीं पहुंचे। तो जो सन्यासी हैं गोपाल को लेकर वो आए, उनको चलना भी नहीं आ रहा था, उनके पांव में सूजन थी, और उसके साथ साथ वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। लेकिन उस समय ये जो गोपाल गोपाल गिरी हैं जिनके लिए विग्रह आए, इन्होंने जगन्नाथ की सेवा स्वीकार की थी, वहाँ राजा के कैशियर के रूप में सेवा करते थे, लेकिन वहाँ धन आदि के साथ धन आदि का इस्तेमाल करते हुए फिर भी उनका जो मन है सेवा के लिए तीव्र था, अनुराग और बढ़ रहा था। और फिर एक ये जो सन्यासी पहुंचा जगन्नाथपुरी में, इनके पास धन संपदा आदि बहुत थे, वहाँ एक स्थान था जहाँ ये निवास करते थे गुंडीचा मंदिर के पास ही गोपालगिरी। तो फिर ये सन्यासी पहुंचा जगन्नाथपुरी में और पूछने लगा कौन है गोपालगिरी, जैसे पुजारी ने माधवेंद्रपुरी पूछा था कौन है माधवेंद्रपुरी, उनके लिए खीर चोरी की है। तो वैसे ही गोपाल जब ब्रज से आए और जो सन्यासी है वो पूछने लगा कौन है गोपालगिरी, कहाँ निवास करता है। तो गोपालगिरी को ढूंढा ढूंढा तो वो मुन्नीचा मंदिर के पास जो एक स्थान है वहाँ ये जो कुंदे बेंटा शाही ऐसा एक स्थान है वहाँ ये निवास करते थे और सुबह के समय में गोपाल गिरी से मिलते हैं वो सन्यासी और कहते हैं कि ये जो गोपाल हैं ये ब्रज से आए हैं आपसे सेवा लेना चाहते हैं आप इनको स्वीकार करो। तो गोपाल गिरी के हृदय में इतना अधिक आनंद का वर्धन हो गया वो भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे और देखा कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण गोपाल जीव के रूप में उनके सामने आए उस सन्यासी के द्वारा और भगवान को देखकर प्रणाम आदि करने लगे उनकी स्तुति करने लगे उनको लिया रोमांच या उनके आंखों से आंसू बहने लगे उन्होंने गोपाल को अपने गले लगाया और फिर उस सन्यासी को कहा वो अपने रूम में ले गए जहाँ एक उड़न बॉक्स बहुत सारे धन से भरा हुआ था एक जो बॉक्स है कहा कि आप जितना चाहो धन ले लो लेकिन गोपाल मेरे पास ही रहेंगे। उस सन्यासी ने कहा मुझे आपके धन आदि की आवश्यकता नहीं है जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं गोपाल की सेवा करना चाहता हूँ गोपाल की सेवा में ही रत रहना चाहता हूँ। तो ऐसे अभिलाषा करके वो सन्यासी यहाँ रहने लगे। तभी राजा की नौकरी इनके पास थी कैशियर थे धन आदि इतना आता था लेकिन उन्होंने तुरंत राजा को कहा कि मेरा इस्तीफा ले लीजिए मैं अभी ये नौकरी आदि नहीं करना चाहता मैं तो केवल अपने जीवन में एक ही ड्यूटी करना चाहता हूँ गोपाल की सेवा और गोपाल के लिए कीर्तन करना चाहता हूँ बस। तो राजा ने कहा कैसे होगा आप यदि इस सेवा को छोड़ के जाओगे। फिर भी राजा ने क्या किया कहा कि आपका जो कीर्तन है वो जगन्नाथ के लिए बहुत आकृष्ट करता है तो आपका ये जो गिरी परिवार है वो जरूर साल में एक बार वहां आए जगन्नाथपुरी और जगन्नाथ के लिए कीर्तन करें। अभी भी वो अभिलेख वहां है जिसमें ये मेंशन किया है राजा ने। तो इस प्रकार से गोपाल गिरी अपने गोपाल जीव को लेकर आते हैं फिर उनके साथ श्रीमती राधिका को स्थापित करते हैं और फिर उनकी सेवा करने लगते हैं। तो ऐसे गोपाल गिरी भगवत सेवा में नियुक्त हुए हैं लगभग 84 साल के जब तक वो थे तब तक उन्होंने जो इनकी सेवा की और ऐसे ये जो गिरी परिवार है उनमें काफ़ी महान महान वैष्णव आए हैं और गोपाल की कई सारी लीलाएं हैं कल हम और भी श्रवण कर सकते हैं इस ग्रेस चैतन्य चंद्र प्रभु के द्वारा। तो ऐसे गोपाल जब यहाँ रहने लगे उस समय तो बहुत छोटा सा स्थान था झोपड़ी थी उनके लिए जहाँ गोपाल निवास करते थे और कई ऐसा वर्णन आता है कि 150 साल पहले एक जो बाबा जी हैं वो उनकी सेवा के लिए हेल्प करता था तो एक चोर ने वो जो विग्रह हैं गोपाल हैं उनको चुराया और भगवान जो एक भक्त थे उनके भगत चरण गिरी उनके स्वप्न में आते हैं बल्कि 3 किलोमीटर दूर गोपाल को उठा के ले जा रहा था रात को और जब ये इस वैष्णव के स्वप्न में आए तो गोपाल ने कहा कि ये मुझे लेके जा रहा है इधर ही नजदीक एक विलेज है या गांव है जहाँ वो चोर गोपाल को लेके भाग रहा था रात को भागते भागते उसको सांप काटता है और वो मर जाता है। तो गोपाल भगवत चरण जो गिरी है उनको कहते हैं कि आप आओ मुझे यहाँ से वापस ले जाओ। तो सारे फिर रात को उठते वैष्णवगण जाते हैं कीर्तन आदि करते हुए हैं गोपाल को ले आते हैं और पूर्ववत उनकी सेवा शुरू होती है। तो ऐसे ये जो गिरी परिवार है इसी में ही श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का प्राकट्य होता है महान वैष्णव। तो ऐसे महान वैष्णव जन्म लेते हैं चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्युनाय संगे आये से न संगे जाए न तथाय कि जो महान वैष्णव है उनके कार्यकलाप भी भगवान कृष्ण के समान है। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम जिस प्रकार से मेरे जन्म कर्म दिव्य है उसी प्रकार से भगवान के जो प्रिय भक्त है नित्य पार्षद है उनके कार्यकलाप भी सर्वसाधारण नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने कहा संगे आये सेना संगे जाये न तथाय, भगवान के संग में आते हैं, भगवत सेवा करने के लिए वो आते हैं, भगवत आदेशों के अनुसार वापस भगवत लीला में वो प्रविष्ट हो जाते हैं भगवत सेवा के लिए। धर्म कर्म जन्म वैष्णवेर कभु नहे, पद्म पुराणे ते यहाँ व्यक्त करी कहे। इस प्रकार से पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत करते हुए वृंदावन दास ठाकुर इस चीज का वर्णन करते हैं। तो ऐसे वैष्णवों के बारे में सुनना, जो वैष्णव बनना चाहते हैं उनके लिए एक प्रमुख साधन है, क्योंकि वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र, शास्त्र कहते हैं कि वैष्णव का चरित्र बहुत अधिक पवित्र करने वाला है, जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अंदर तुरंत एक गुण का विकास होता है, और वो क्या है, भगवत सेवा के प्रति दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। तो ऐसे हम श्री गौर गोविंद महाराज इसी एक प्रकार से परिवार में उनका जन्म होता है, गिरी परिवार में। तो गिरी परिवार में आगे बहुत सारे जो वैष्णव एक के बाद एक प्रकट हुए हैं, उनमें से जो बौरी बंधु गिरी थे उनके पुत्र थे गोपीनाथ गिरी, जगन्नाथ और दीन बंधु, और उनकी एक बहन थी पाता देवी। तो पाता देवी के पुत्र के रूप में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का जन्म होता है, जिनका बचपन का नाम ब्रज बंधु मनिक था। ब्रज बंधु है कि नहीं, ब्रज के ही बंधु है, कितना मधुर नाम है, जिनका बचपन से ही संबंध ब्रज से है, वृंदावन से है। तो ऐसे गौर गोविंद स्वामी महाराज हाँ प्रकट हुए थे 1929 सितंबर, जगन्नाथपुर, यहाँ से नज़दीकी एक स्थान है जहाँ हम लगभग कुछ साल पहले गए थे भक्तों के संग में। तो गौर गोविंद महाराज प्रकट हो जाते हैं, और फिर हम सब सुनते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर आता है, उनके माँ को बताता है कि ये जो पुत्र है ये क्या करेगा, बहुत महान भक्त होगा, और भक्त होने के साथ साथ ये बहुत अधिक बुद्धिमान होगा, और सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन बीच में साधु बन जाएगा। साधु बन के ये जो एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्या कि ये जो गोपाल का स्थान है उसका प्रकाश पूरे विश्व में कर देगा। अभी कोई समझ सकता है, कोई सोच नहीं सकता, ऐसे परिवार में वो रहे, ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जो घास की कुटिया में रहता है फैमिली, जहाँ जिनका बचपन की पढ़ाई करते थे, कैसे माँ जब रोटी या कुकिंग करने के लिए चूल्हा जलाती थी उसके प्रकाश में ही वो पढ़ा करते थे, और उसके प्रकाश में ही श्रीमद् भागवतम आदि को पढ़ते थे बचपन से ही, और उनकी माँ पता देवी महान वैष्णवी थी, महान भक्त थी, जिनका अनुराग श्रीमद् भागवतम महाभारत आदि को श्रवण करने के लिए था, और वो सदैव गोपाल की सेवा के लिए यहाँ आती थी जगन्नाथपुर से। और ये गौर गोविंद या ब्रज बंधु मनिक वो भी अपने माँ के साथ यहाँ आते थे, और बचपन से ही गोपाल की सेवा करने के लिए सदैव लगे रहते थे। तो ऐसे गौर गोविंद महाराज अपने 5 साल की आयु से ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो उड़िया भाषा में है उसका उसको रिसाइट करना शुरू किया था। और एक बार जब वो यहाँ वो रुके थे, लगभग उनकी आयु 5 साल की थी, छोटे ही बालक के थे, गोपाल की सेवा के लिए उनका बहुत अधिक अनुराग था। तो जब एक बार वो शाम का समय हो गया, गोपाल की सेवा आदि की, उनके जो मामा या जो भी वैष्णव गण है उनके साथ, और जब रात को सोए, तो गोपाल इस छोटे से बालक के स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि हे ब्रजबंधु, हाँ मुझे 2 लोग चुरा के लेके जा रहे हैं मंदिर से, तुम उठो और क्या करो, मुझे मुझे ले आओ वापस। तो इन्होंने अपने जो ग्रैंडफादर थे उनको उठाया, ब्रजबंधु ने, और उठाकर देखा कि गोपाल तो उनके स्थान में है नहीं, गोपाल तो मंदिर से गायब है, 2 लोग उनको चुरा के ले गए हैं, दूर तक ये लोग दौड़ते गए खेतों में, देखा कि 2 लोगों ने गोपाल को चुराया था, उनको डायरिया और उल्टिया होकर वो लोग बिल्कुल मूर्छित अवस्था हमें एक प्रकार से हो रहे थे, देखा कि गोपाल एक और पड़े हैं। तो ऐसे गोपाल को लेकर फिर से वापस आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इतने छोटी आयु में भी गोपाल के साथ उनका इतना अधिक गहरा प्रेम का या सेवा का संबंध था। तो ऐसे जो महाराज हैं, जो 8 साल की आयु में ही उन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को पढ़ा था, भगवत गीता को पूरा कंठस्थ था, इवन वो 8 साल की आयु में भी भगवत गीता और भागवतम को सुनाया करते थे शाम के समय में, क्योंकि उड़ीसा में भागवत तुंगी होती है जहाँ श्रीमद् भागवतम आदि को रखते हैं। शाम के समय विलेजर्स अपने खेती का कार्य करके वहां आते हैं, श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। तो ऐसे गौरव गोविंद महाराज बचपन से ही श्रीमद् भागवतम और इसका इसमें बहुत अधिक रुचि रखते थे। उनकी माता कहती हैं कि जब ये ब्रज बंधु सोता नहीं था, रोया करता था रात को, तो मैं उनके छाती में श्रीमद् भागवतम रखते थे, भागवतम का आलिंगन करते हैं वो सोया करते थे, उनको भागवतम के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, इतना अधिक उनका श्रीमद् भागवतम से प्रीति या प्रेम हो गया था। जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम ही मेरे लिए माता है, पिता है, मित्र है। इस प्रकार से महाराज ने सबसे पहले कोई चीज याद की थी, तो हम वैष्णवगण कहते हैं कि उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों को सीखा था सबसे पहले, बचपन में सारे गीतों को कंठस्थ करते हुए गाते थे। और महाराज एक लेक्चर में कहा करते थे कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ सुना था, तो वो माधवेंद्रपुरी की कथा थी जो अपने ग्रैंडफादर के द्वारा बचपन में मैंने सुनी थी, और मुझे बहुत अनुराग था श्रीपद माधवेंद्रपुरी और उनके जो विग्रह हैं, उनके भी विग्रह कौन से हैं, गोपाली हैं। तो ऐसे महाराज का जो चरित्र है बहुत ही अधिक इंस्पायर करता है और बहुत ही अधिक भगवत प्रेम से भरा हुआ है। तो ऐसे गौर गोविंद महाराज जब बड़े हुए तो उनका विवाह होता है, बल्कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी गृहस्थ जीवन में जाने की, उनकी तो एक ही इच्छा थी कि किस प्रकार से मैं निरंतर अपना जो जीवन है समर्पित करो गोपाल की सेवा में। जब उनका विवाह हो जाता है, लगभग वो 21 साल के थे, उनकी पत्नी बसंती देवी जिनकी आयु 16 साल की थी, वर्णन आता है कि वो उनका जब विवाह हुआ तब वापस जब आ रहे थे विवाह के बाद, तो उनको सोने की अंगूठी दी गई थी, मैरिज में देते ना दहेज के रूप में या जैसे भी, तो उन्होंने अपने अंगूठी को देखा, उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो माया ही है। अंगूठी को पकड़ा और घास में दूर जंगल में फेंक दिया। तो उनका कृष्ण सेवा के अलावा किसी और चीज में अनुराग नहीं था, और वो 3 चीजों से सर्वाधिक प्रीति रखते थे। एक था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे भगवत नाम, और दूसरा था चैतन्य महाप्रभु, और तीसरा था श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे गौर गोविंद महाराज इन 3 चीजों से पहले से प्रीति रखते थे, बल्कि वो स्कूल टीचर थे, कई स्कूलों में वो पढ़ाते थे, और पढ़ाते समय भी वो बच्चों को कोई भी उदाहरण हो राम श्याम और घनश्याम और कृष्ण ध्रुव प्रहलाद आदि से उनका नामोच्चारण करते हुए समझाया करते थे, और जरूर क्लास के बाद शाम के समय भागवतम से कोई कथा बच्चों को सुनाया करते थे। हेडमास्टर दरवाजे में आके आंखें बड़ी बड़ी करके देखता था कि क्या हो रहा है। तो घर में बल्कि वो कहा करते थे कि मैं चारों आश्रमों से गुजरा हूँ, किसको एक्सपीरियंस चाहिए, मैं महाराज कहा करते थे मैं महान एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, चारों आश्रमों से गुजरा हूँ और अलग अलग आश्रमों में मैंने विपदा या इसको झेला है। तो जब वो गृहस्थ आश्रम में गुजरे थे तो महाराज ने कहा कि गृहस्थ आश्रम तो एक बहुत बड़े बास्केट को सर के ऊपर लेके चलना और जिसमें बच्चे पत्नी और सब कुछ है, और आप कृष्ण की ओर भाग रहे हो, ऐसे भागोगे तीव्रता से। तो फिर भी इतनी सब विपदा होने के बाद भी, इतना सब कष्ट आदि होने के बाद भी, उनके हृदय से थोड़ी भी कृष्ण के प्रति या गोपाल के प्रति प्रेम की भावना कम नहीं हुई, हाँ, वो कहते कि एक बार मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार जा रहा था, अपने स्कूल या जब टीचर थे वो उन दिनों में वो चिन्मयानंद मिशन से जुड़े थे, जो शिवानंद के डिसाइपल है चिन्मयानंद। तो जब वो जा रहे थे बरेली तक, उनके पास कोई स्थान नहीं था बैठने का, बच्चे थे, पत्नी थी, और एक टीसी ने देखा इनके पास ये नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, ये वेटिंग होगा ट्रेन का या जो भी। उस टीसी ने उनको बरेली में उतार दिया, बैग्स के साथ बाहर फेंका, बच्चे पत्नी। तो इन्होंने कहा ये तो कृष्ण के ही अरेंजमेंट है, बच्चे को और पत्नी को कहा क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धूप में ही वो उतरे, धूप हो गई थी वहां, अपने बिड बैग निकाली और चांट कर रहे हैं। बचपन से ही जो उनके गिरी परिवार के जो वैष्णव थे उन्होंने ही उनको बचपन से उंगलियों पर हरे कृष्ण महामंत्र जप कराना सिखा था, तब से वो हरे नाम का उच्चारण कर रहे थे। और जब वो इस सिचुएशन में अपने बच्चे पत्नी आदि के साथ हरे नाम ले रहे थे तो अचानक एक व्यक्ति आता है और जो टीसी था उसको डांटने लगता है, इतना डांटता है कि टीसी तुरंत इनको स्थान प्रदान करता है, सीट्स और सारा मान सम्मान से लेकर उसको बिठा देता है। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कई प्रकार के कष्टों से मैं गुजरा हूँ, और उनका हृदय या मन अपने गृहस्थ जीवन में नहीं था, और महाराज रोज अपना डेली डायरी लिखा करते थे। हाँ, जिसमें एक दिन वो वर्णन करते हैं कि मैं एक दिन किसी एक स्थान में गया, एक दुकान में मैंने देखा कि जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं कृष्ण के विग्रह का आलिंगन करके, अपने उड़ीसा या बंगाल में ये फोटो देखी होंगी, या फिर चैतन्य महाप्रभु या पार्षद थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो महाराज लिखते उस डायरी में कि मैं हम वहाँ कहते कि मैं उनसे प्रार्थना करने लगा, चैतन्य महाप्रभु या उनके पार्षदों से, कि आप मुझे इस गृहस्थ जीवन से मुक्ति दिला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके प्रेममयी सेवा के अलावा मैं किसी और वस्तु का या किसी और चीज का अभिलाषी नहीं हूं, मुझे तो आपकी केवल केवल प्रेममयी सेवा चाहिए, मुझे आप इससे मुक्त कीजिए। जिस प्रकार से पंच तत्व ने प्रेम का भंडार खोलकर सबको कृष्ण भावनामृत या कृष्ण प्रेम का वितरण कर किया, मैं भी उसी प्रकार से उस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं और उसी प्रेम का वितरण करना चाहता हूं। आप क्या कीजिए, मेरे जो भाई हैं जिनका नाम दीन बंधु था ना महाराज के जो भाई, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई को सारा सब कुछ दे दो हे भगवान। हाँ, वो मेरे पत्नी बच्चे आदि का ध्यान रखेगा, लेकिन मुझे तो आपकी निरंतर सेवा में लगा। तो ऐसे एक दिन महाराज अपने स्कूल में से आते हैं और घर में श्रीमद् भागवतम को उठाते, एक पेन को उठाते हैं, एक गमछा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। कुजंग उनका स्कूल था, फाइनल स्कूल, जिसमें काकुड़िया मठ है, शाम के समय में उस मठ में जाते हैं, और वहाँ घर में माँ मदर थी, फिर पत्नी आदि है, सब वेट कर रहे थे। उनको पता चला कि वो तो निकल गया है, साधु बनने के मूड में है, तो वो घर ही नहीं जा रहे थे, केवल गमछा और ये चीज और सेफ्रॉन पहन लिया था उन्होंने, इतना विरक्ति। और जब पत्नी देखने लगी अभी पहुंचे नहीं घर, तो पत्नी गई, तो ये अपने मित्र सुभाष के साथ थे, जिन्होंने महाराज को वैराग्य के जो सॉन्ग्स हैं वो गाए थे उनके लिए। फिर जब देखा कि दूर से पत्नी आ रही है, तो अपने मित्र को कहते कि देखो माया आ रही है मुझे ले जाने के लिए। तो फिर भी भगवत प्रेम से उसी समय वो बहुत अधिक विवल हो उठे और वो वापस नहीं गए। और फिर वो उनके प्रिय जो विग्रह है गोपाल, जो उनका जीवन ही था, गोपाल के लिए उनका लाइफ था, उनके प्राण वल्लभ थे एक प्रकार से। तो ऐसे फिर उस समय वो आते हैं, लंबा सफर तय करते, चलते चलते दिन रात यहाँ आकर पहुंचते हैं, केवल क्यों, क्योंकि वो गोपाल का परमिशन लेना चाहते थे, आगे निकलना चाहते थे, अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु की खोज के लिए वो निकल रहे थे। यहाँ आकर यहाँ जब पहुंचते हैं तो उस समय 1974 में गदाईगिरी में आते हैं और यहाँ वो कहते हैं कि चलता हुआ साधु बहता हुआ पानी, ये हमेशा पवित्र रहते हैं। तो इस प्रकार से वो आए यहाँ और फिर इस समय जो फेस्टिवल हो रहा था और उस फेस्टिवल में उन्होंने अपने विरक्ति को प्रकट किया। सारे वैष्णवगण गोपाल के लिए कीर्तन कर रहे थे तो इस समय सारे जो लोग बैठे थे या भक्त बैठे थे उनके पास उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेक्चर दिया और फिर सबसे भिक्षा मांगी या याचना मांगी, याचना की। हाँ, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भगवान राम वनवास गए, बल्कि वो खुश थे, वनवास गए थे, क्यों खुश थे, क्योंकि मां मुझे वो वैष्णवों का साधुओं का संग प्राप्त होगा। वने गेले मुई मुनि गने भेटी कृतार्थ करे व प्राण, वने जाऊंगा, वन में जाऊंगा, वहां वैष्णव या साधुओं की भेंट होगी और मेरा जो जीवन है वह कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन करने के बाद उन्होंने यहाँ अपने नाम को परिवर्तन किया। पहले तो उनका नाम था ब्रजबंधु, फिर यहाँ आए क्योंकि उनका दोनों से प्रीति था, गौरांग महाप्रभु से था और गोपाल से था, तो उन्होंने अपना नाम गौर गोपाल किया कि आज समय गौर गोपाल हो। और वो निकल पड़े हिमालयास की ओर, हरिद्वार की ओर। हाँ, वैश्य साधु का वेश धारण किया था और वो शिखा वगैरह तो नहीं रखा था, उन्होंने मुंडन कर लिया था पूरा। फिर जब वह चिन्मयानंद आश्रम में गए हरिद्वार में, वह देखा कि सारे लोग नोज प्रेसिंग जो एक्सरसाइज है, नाक बंद करो खोलो योगा करो, इसमें लगे हुए हैं। वहां के जो चिन्मयानंद स्वामी थे उनको कहा, इन्होंने पूछा, यहाँ ये तीन चीजें क्यों नहीं नजर आ रही है, ये क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, क्या हरे नाम नहीं है जो कलयुग का धर्म है? और यहाँ चैतन्य महाप्रभु नहीं है जो इस प्रेम को लेकर आए हैं? और यहाँ श्रीमद् भागवतम की चर्चा नहीं है? उन्होंने के गेट आउट, उन्होंने भगा दिया, ये सब नहीं होगा, तो उनको भगा दिया वहां से। फिर महाराज देखा कि ऋषिकेश के वहां जो साधु हैं अकेले अकेले गुफा में निवास करते थे, उनके संग में रहने लगे, एक साधु के पास रहने लगे, थोड़ा थोड़ा सोचा विरक्ति का जीवन यापन करते हैं, लेकिन देखा वो बाबा जी या साधु तीन चार अपनी गुफा में प्लेटें लेके, डब्बा प्लेट कमंडलू, और रोज पांच छह भंडारा में जा रहा है, कभी दोपहर को कभी सुबह कभी शाम, केवल प्रसाद इकट्ठा करने में लगा है। उन्होंने कहा ये उचित नहीं है, इन्होंने तो अपने जीवन का लक्ष्य भंडारा में केवल स्वादिष्ट व्यंजनों का आस्वादन करना ही हम बनाया है। तो वहां से वो निकल पड़े आध्यात्मिक गुरु की खोज में। उनके पास लक्ष्य भी नहीं था, एक रुपये भी नहीं था। वैष्णवगण उस ग्रंथ में लिखते हैं कि कभी कभी वो नदी के किनारे सोया करते थे, कभी मंदिरों के बाहर सोते थे, कभी हाईवेज के साथ जो वृक्ष है उनके नीचे सोया करते थे। ऐसा बहुत ही कठिन जीवन यापन करते हुए फाइनली उन्होंने सोचा, हरिद्वार से मैं अभी वृंदावन आता हूँ जो मेरा नित्य स्थान है, मेरे जो गोपाल है उनका स्थली है। तो ऐसे महाराज वृंदावन आते हैं, वृंदावन पहुँचते ही कभी यमुना के किनारे सो रहे हैं, कभी किसी जगह। तो एक दिन जब वो जा रहे थे रमन रहती के जो रास्ते से, उनको एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब देखा तो उन्होंने ये क्या है, जाता हूँ तो उस समय कृष्ण बलराम मंदिर नहीं बना था, तो मंदिर बना नहीं था, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, प्रभुपाद हाउस बन गया था, प्रभुपाद का रूम बन गया था, जब प्रभुपाद बाई चांस उस दिन वहां थे। हाँ, ये भगवान की विशेष योजना है, भगवान की विशेष कृपा है। तो वहां महाराज पहुंचे तो जो बुक टेबल है वहां कई फॉरेनर डिवोटीज थे, कुछ डिवोटीज कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगे थे, तो बुक टेबल में उनको बैक टू गॉडहेड दिखाई दिया। बैक टू गॉडहेड को देखते वहां क्या था, तीनों चीजें थी, एक था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वहां हरे कृष्ण मंत्र भी था, श्री चैतन्य महाप्रभु थे और श्रीमद् भागवतम भी था। उन्होंने कहा यही सही स्थान है मेरे लिए। देखा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो उन्होंने कहा मुझे स्वामी जी से मिलना है, स्वामी ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद से मिलना है। तो किसी ने कहा उनका रूम उधर है और उनके असिस्टेंट है ब्रह्मानंद स्वामी, उनके पास जाइए, उनका परमिशन लीजिए और मिलिए भक्ति वेदांत स्वामी से। तो गए तो ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि दोनों भाई है ना, ब्रह्मानंद तो वैसे ही बिग हैवी पर्सनैलिटी है। तो गए, ये तो बड़े सरल छोटे से एक प्रकार से ना छोटे है पतले थे, गए उन्होंने कहा मुझे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिलना है। तो कई प्रश्न पूछने लगे, फिर उन्होंने गए और कहा कि प्रभुपाद एक साधु आपसे मिलना चाहता है। तो प्रभुपाद दोपहर का समय हुआ था, प्रभुपाद अकेले थे, इन्होंने पूछा क्यों मिलना चाहते हो, इन्होंने कहा बस मैं उनको प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ, एक प्रणाम वैष्णव को करने मात्र से इतनी अधिक आध्यात्मिक इतना अधिक आध्यात्मिक लाभ हमें प्राप्त होता है कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, मैं उनकी प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ, बस उनका ब्लेसिंग या आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद को जाकर बताया, प्रभुपाद ने कहा भेजो उनको अंदर, गए और प्रभुपाद को देख के उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और प्रभुपाद ने पहला ही प्रश्न पूछा, क्या तुमने संन्यास लिया है? उन्होंने कहा नहीं। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। और वास्तव में उनके हृदय की यही इच्छा थी, वो ऐसे आध्यात्मिक गुरु को ढूंढना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि मेरे हृदय को पहचान लिया, मेरे हृदय का ये इच्छा हाँ को इन्होंने जान लिया है। तो तब से प्रभुपाद के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित हुए। प्रभुपाद ने काफी देर बात की, हाँ उनको काफी चीजें पूछी, सब पूछा, और उन्होंने कहा तुम हिंदी भी जानते हो, मेरे ग्रंथ का हिंदी अनुवाद कर सकते हो? प्रभुपाद स्पेसिफिक है, कोई भी मिले सेवा में लगा देते हैं। और उन्होंने कहा मैं जानता हूँ। तो एक पेन दे दिया, पेपर दे दिया, और जो बुक था हिजे जर्नी टू अदर प्लैनेट शायद जो पहला बुक था उनको दे दिया कि आप इसको दिखाओ, ये कोई आर्टिकल दिया बेटी जी का कि इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ मुझे। तो कुछ समय बैठे प्रभुपाद के साथ, उन्होंने हिंदी अनुवाद किया और दिया, प्रभुपाद को पढ़ के सुनाया। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को बुलाया, इनको एक रूम अलग से दे दो, एक टेबल दे दो, चेयर दे दो, पेन और पेपर दे दो, आज से ये मेरे ग्रंथों का अनुवाद करेगा। अभी ये जब बाहर आ गए तो बाकी सीनियर चर्चा करने लगी, आज ही आया है इसको अलग से रूम, हमें आज तक अलग रूम नहीं है, टेबल चेयर नहीं है। तो उन्होंने प्रभुपाद ने तो कहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आप अभी बाहर से आना होगा, आपको नए नए भक्त को पहले ही दिन आप अलाउड नहीं करते, आप बाहर से आओ, दिन भर सेवा करो और रात को रहने के लिए चले जाओ। तो ये जाते थे बाहर, इधर उधर रहते थे, लेकिन दिन में श्रील प्रभुपाद के आंदोलन की सेवा करने के लिए आते थे। बाद में प्रभुपाद को पता चला कि इतने दिन हो गए इनको, इन लोगों ने ना पेन दिया ना पेपर ना रूम, हाँ तो फिर ये आते थे, कई प्रकार की सेवा में लगे थे, बल्कि सबसे एक प्रकार से आयु में सीनियर थे, टॉयलेट क्लीन करना, कुकिंग करना, बहुत प्रकार की सेवा से हाँ पूर्ण रूपेण अपने हृदय को प्रभुपाद के चरणों में अर्पित करते हुए जो भी सेवा प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए प्राप्त हो रही थी उन सेवाओं को करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। और प्रसाद तो इतना अच्छा बनाते थे कि भक्त लोग जब प्रसाद खाते समय बातें करते थे कि आज किसने प्रसाद बनाया इतना टेस्टी, तो दूसरा कहते तो आज का जो मायावादी आया है ना उसने प्रसाद बनाया है, प्रभुपाद ने तो मायावादी को भी भक्त बना दिया। क्योंकि महाराज बड़ा सिंपल रहते थे और उनका शिखा वगैरह तो नहीं था, हम सोचते शिखा नहीं है तो ये मायावादी है। इस प्रकार से प्रभुपाद की सेवा में लगे रहे और फिर प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा ली, शायद हैदराबाद में दीक्षा हुई तो मुझे याद नहीं, तो वहाँ दीक्षा ली, उनका नाम पड़ा गौर गोविंद दास। तो फिर जब उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन उनके हृदय में और भी एक इच्छा थी, मुझे क्या करना है, संन्यास ग्रहण करना है। तो फिर प्रभुपाद ने एक बार लेटर लिखा कि मैं आपको संन्यास देना चाहता हूँ, तुम हैदराबाद का फेस्टिवल अटेंड करके वृंदावन मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर का जो ओपनिंग सेरेमनी है वो अटेंड करने के लिए आ जाओ, भगवत दास उनके साथ जो एक दूसरे प्रभुपाद के शिष्य थे विदेशी, उनके साथ आ जाओ, मैं उनको आपको उस समय संन्यास प्रदान करूंगा। तो वहाँ सुबल स्वामी शायद और एक दो 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 डिवोटीज को संन्यास दे रहे थे प्रभुपाद। सबको तो एक सन्यासी के बारे में पता था, एक डिवोटी के बारे में पता था कि इनको सन्यास मिलने वाला है, लेकिन दूसरे के बारे में किसी को पता नहीं था, ना जीबीसी को ना किसी सीनियर डिवोटीज को। केवल उस वो जो कैंडिडेट है जिसको सन्यास लेना है और जो सन्यास देने वाले हैं प्रभुपाद, उनको ही पता था। तो जब सन्यास सेरेमनी हुआ तो प्रभुपाद ने पहले को दिया और दूसरे के लिए प्रभुपाद ने कहा, तो महाराज तुरंत खड़े हो गए, आए और प्रभुपाद से संन्यास स्वीकार किया। और हर सन्यासी को सन्यास लेने के बाद अपने गुरु की प्रशंसा में स्पीच देनी होती है, आध्यात्मिक गुरु का गुणगान करना होता है। तो उस समय महाराज विशेष गुणगान करते हैं, तो भक्त कह रहे थे कि प्रभुपाद की आंखें बिल्कुल जल से भर गई थी उनके उस स्पीच को सुनकर प्रभुपाद के प्रति। तो ऐसे महाराज सन्यास लेते हैं और प्रभुपाद जब सन्यास के बाद अपने रूम में जाते हैं तो सारे सीनियर जीबीसी आदि वहां एकत्रित होते हैं और वो कहते हैं कि प्रभुपाद ये तो नया भक्त था, इस नए भक्त को आपने सन्यास दे दिया। प्रभुपाद ने कहा, आप सब नए हो, ये जन्म से ही महान वैष्णव है। तो इस प्रकार से संन्यास ग्रहण करते हैं और सदैव तत्पर थे श्रील प्रभुपाद की सेवा में। प्रभुपाद ने कहा कि हे गौर गोविंद, हमें भुवने, तुम ओडिशा से हो, भुवनेश्वर में हमें लैंड मिली है, छवि कानुंगो और एक उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने लैंड हमें डोनेट की है, आप जाओ और वहाँ प्रचार करो। उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप मुझे, मैं अकेला हूँ, कुछ भक्तों को साथ दे दो ना, हाँ कुछ और नहीं है मेरे पास। प्रभुपाद ने कहा, वैष्णव अकेला नहीं होता। महाराज ने कहा, आप वैष्णव थे। प्रभुपाद ने कहा, मैं भी तो अकेला गया था। तो महाराज कहते कि आप वैष्णव हो, आपके साथ कृष्ण उनके छह ऐश्वर्य को लेकर आपकी सेवा में लगे रहते हैं। भक्त की सेवा में जो भगवान लगते हैं तो षड ऐश्वर्य के साथ लगते हैं। तो इन्होंने कहा, मैं तो वैष्णव नहीं हूँ। प्रभुपाद ने कहा, नहीं आप अकेले चले जाओ ओडिशा, वहां लैंड मिली थी ऐसी जगह, नया पल्ली जो विलेज था, जहाँ दिन में लोग जाने में डरते थे, जहाँ एक वृक्ष था बड़ा सा, पता नहीं वट वृक्ष या कोई, सारे गांव वाले कहते थे भूत का स्थान है, कोई विवाह नहीं जाता था। लेकिन महाराज को जब भेजा, उनके पास ना धन था, ना कोई और भौतिक सुविधा थी, ना कोई उनके भक्त उनके साथ था, अकेले सन्यासी। जब वो आए उन्होंने इस स्थिति को देखा कि यहाँ बहुत कठिन है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार वो वहां बने रहे। हाँ, जब उस मंदिर के लैंड के सामने हाईवे का काम हो रहा था तो उस समय वो जो हाईवे वर्कर्स हैं उनके झोपड़े में 6 महीने रहे उनके साथ ही। लेकिन आपने जो गुरु का आदेश है उसको गंभीरता से लेकर उस स्थान से हटे नहीं, बल्कि महाराज कहते कि मैं तो प्रसाद में उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं था, न भोजन करने के लिए, कोई उनको साधु देख के हाथ पकड़ के उनको बिंदु सरोवर के किनारे अनंत वासुदेव मंदिर ले जाता था, प्रसाद खिलाता था और 1 रुपया दक्षिणा देता था। हाँ, कभी कभी किसी व्यक्ति के साइकिल का जो पीछे का कैरियर होता है उसके ऊपर बैठ के जाते थे, कहा बिंदु सरोवर के किनारे अनंत वासुदेव, जहाँ एक धर्मशाला में वो रुकते थे, जो भी बिल्कुल टूटा फूटा सा था। तो ऐसे बहुत ही कठिन स्थिति में वो बने रहे, लेकिन उन्होंने श्रील प्रभुपाद की ये जो दिव्य सेवा है उसको छोड़ा नहीं। तो ऐसे महाराज रहे इन सब स्थानों में और प्रचार करते रहे, लोगों को मिलते रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। फिर फाइनली एक दो भक्तों को भेजा गया और श्रील प्रभुपाद, क्योंकि यहाँ आना नहीं चाहते थे प्रभुपाद उड़ीसा में, वो नाराज थे एक प्रकार से, मान जिस प्रकार से श्रीमती राधिका मान प्रकट करती हैं तो मान भंग करने के लिए कृष्ण ही उनका मान भंग करते हैं, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कोई मान प्रकट किया था कि मुझे ओडिशा नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जब आए थे, क्योंकि वहां उनके शिष्यों को अलाउड नहीं था, वेस्टर्न जो डिसाइपल्स है उनको जगन्नाथ का दर्शन करना अलाउड नहीं था। प्रभुपाद ने कहा, मैं क्यों जाऊं वहां? बल्कि प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में कई दिन रहे और रहकर भी प्रभुपाद जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए, 12 दिन से ज्यादा रहे थे। और उन्होंने कहा यदि मेरे शिष्यगण नहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए तो मैं भी जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए अंदर नहीं जाऊंगा। इतना एक प्रकार से प्रीति था भक्तों के प्रति। तब से प्रभुपाद थोड़ा हटके रहते थे, लेकिन एक बार गौर गोविंद महाराज ने कहा तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम ही मुझे ले जा सकते हो वास्तव में उड़ीसा। तो जब फाइनल प्रभुपाद बहुत बीमार थे, कुंभ मेला था उस समय, कुंभ मेला के बाद महाराज श्रील प्रभुपाद को इनवाइट करते हैं और प्रभुपाद के लिए महाराज वो जो लैंड है वो खुद अपने हाथों से झोपड़ी बनाते हैं घास का। बल्कि उनके जो शिष्य थे उन्होंने प्रभुपाद के लिए भुवनेश्वर में बहुत बड़ा जो होटल है उसमें रूम आदि बुक किया था कि आप यहाँ निवास कीजिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, जहाँ मेरा गौर गोविंद ने मेरे लिए कुटिया बनाई है उस स्थान में मैं रहूँगा। और उन्होंने वहाँ ही श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य आखिरी जो 10th कैंटो है उसका तात्पर्य देना शुरू किया था। तो वहाँ प्रभुपाद इतने सिंपल इसमें रहे, घास का कुटिया, नीचे ऐसा कुछ बिछाया हुआ था और टॉयलेट चारों ओर से कपड़ा लगाया था, उसी को इस करते थे। इतना प्रीति श्रील प्रभुपाद का श्री गौर गोविंद महाराज के प्रति था। तो ऐसे महाराज बहुत अधिक आसक्त थे श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके आंदोलन के प्रति। तो वो महाराज कहा करते थे कि सब कुछ श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों में है। जो व्यक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों का ऊपरी ऊपरी अध्ययन करेगा वो व्यक्ति एक मछुआरे के भांति है। जो मछुआरा ऊपर अपना जाल डालता है तो उसके जाल में केवल मछलियां ही आती हैं, लेकिन जो डीप सागर में और नीचे जाता है जलाशय में तो हीरे मोती माणिक आदि को इकट्ठा करता है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, प्रभुपाद के शब्द हैं, प्रभुपाद की वाणी है जो दिव्य रत्न और हीरों से भरी हुई है। इस प्रकार से पूरे समय श्रील गौर गोविंद महाराज ने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को स्थापित किया श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद। तो ऐसे महाराज का वर्णन आता है कि श्रील प्रभुपाद जब अप्रकट हुए तो प्रभुपाद के प्रति बहुत अधिक विरह में उनका जो हृदय है वो भर उठा। जगन्नाथपुर या मायापुर में वो निवास करने लगे और बिल्कुल ही एक पागल व्यक्ति के भांति मग्न रहते थे। उनको कोई डॉक्टर भी, सबको लगता था कि बीमार है, डॉक्टर्स आते थे। महाराज कहते थे कि मेरे लिए दवाई एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज फिर उनको कई महीने जो लॉन्ग बिल्डिंग है उसमें रखा गया था, कभी कभी चेयर से बांधा करते थे उनको। इतने अधिक एक प्रकार से आध्यात्मिक प्रेम के विकार उनके शरीर में प्रकट हो जाते थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता था। तो एक बार एक जो व्यक्ति है जिसने श्रील प्रभुपाद का फोटो को देख के कहा था कि ये व्यक्ति ऐसा घर बनाएगा कि जिसमें पूरा विश्व निवास कर सकता है, उसी व्यक्ति ने गौर गोविंद महाराज को आके देखा और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति या तो 3 साल में शरीर त्यागेगा, ये सारे भगवत भाव के लक्षण है एक प्रकार से, और या तो नहीं त्यागा तो 3 साल के बाद इतना प्रचार करेगा पूरा इस्कॉन परमानेंटली उनको स्मरण रखेगा, उनका ऋणी हो जाएगा। और वही हुआ श्री गौर गोविंद महाराज, बल्कि कई महीने तक लॉन्ग बिल्डिंग के एक रूप में रहते थे डिवोटी के साथ और इस प्रकार से सदैव शांत रहते थे, मग बिल्कुल चुप। कभी कभी रोते थे, नाचते थे, हंसते थे, कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, तो किसी को समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उसी समय मायापुर का जो मेन गेट है उसके सामने प्रभुपाद के गॉड ब्रदर है कृष्णदास बाबाजी महाराज, जो भगवत नाम में उनका बहुत गहरा अनुराग था, तो वो सदैव हरे कृष्ण मंत्र के पैम्पलेट्स स्टिकर्स अपने साथ रखते थे। वो नाचते हुए गाते हुए भक्तों के संग में जा रहे थे तो जाते जाते जो भगवत दास हैं, जो एक डिवोटी जो महाराज के साथ हुआ करते थे, उन्होंने उनको देखा और उन्होंने सोचा कि यही व्यक्ति इनको पहचान सकता है। तो उनके पास गए, दौड़ते हुए उनको बुलाया, उनको लाया। उन्होंने कहा कि ये सर्वसाधारण लक्षण नहीं है, ये तो भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। हाँ, इनको धाम से क्या करो, अभी बाहर ले जाओ, तभी ये नॉर्मल हो सकते हैं। धाम के कारण, धाम के प्रभाव के कारण इनके हृदय में भगवत प्रेम इतना बढ़ गया है जिसके सारे लक्षण हैं। तो फिर उनको वहाँ से लाया गया और यहाँ भुवनेश्वर में। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावना का प्रचार किया। और भक्तगण अपना रियलाइजेशन शेयर करते हुए कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद के बाद किसी वैष्णव ने भक्तों के हृदय को आकर्षित किया था तो वो थे श्रील गौर गोविंद महाराज। तो वो विशेष रूप से कृष्ण कथा के लिए बहुत ही अधिक फेमस थे और बहुत प्रभावशाली प्रगाढ़ उनका ये था, कृष्ण कथा था, कृष्ण कथा वर्णन शक्ति थी। तो ऐसे महाराज ने भुवनेश्वर टेम्पल बनाया जो श्रील प्रभुपाद का आखिरी टेम्पल था, 108वां मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर, श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज के। तो फिर गौर गोविंद महाराज ने देखा कि वो बहुत व्यस्त हो गए हैं, उनको यहाँ आने के लिए बहुत कम समय रहता है अपने गोपाल से मुलाकात करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, भुवनेश्वर में ही गोपाल के समान ही विग्रह बनवाए, एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं गोपीनाथ, और उनको इंस्टॉल किया लोटस टेम्पल में। वहाँ तो गोपाल एक रात सपने में आते हैं, कहते मुझे भूल गए हो गोपीनाथ, हाँ इतना पिटाई किया उनका गोविंद महाराज का, पूरे शरीर पीठ में लंबे लंबे वो हो गए थे, क्या कहते हैं मार्क्स हो गए थे, निशान हो गए थे। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा तुम तुरंत आ जाओ सुबह और मेरे सेवा को ले लो। और यहाँ भी जिनके पास गोपाल थे, श्याम गिरी ऐसे कुछ नाम था मुझे याद नहीं, उनमें से ये है, उनके जो भाई हैं दामोदर गिरी, इनके डेटीज थे जो गा रहे थे, इनके हैं गोपाल वास्तव में, इनके पास थे। तो फिर इनके भी स्वप्न में आकर कहते हैं कि आप क्या करो, गोपाल कहते हैं कि ये मुझे गौर गोविंद को दे दो। और फिर वो आते हैं महाराज यहाँ, और अपने जो ये थे मामा या उनके भाई थे एक प्रकार से, उनको कहा कि गोपाल शाम को स्वप्न में आए और गोपाल ने अपना कुर्ता ऊपर करके उन्होंने दिखाया श्री राधा गोपाल जी के। तो महाराज ने अपना कुर्ता ऊपर करके दिखाया कि देखो गोपाल ने मेरे पेट में क्या निशान बनाए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भी गोपाल स्वप्न में आया और उन्होंने कहा कि मैं ये आपको प्रदान करूं। तो उसी समय तुलसी और जल अर्पित करते हुए उनके हाथ में गोपाल को दान के रूप में गौर गोविंद महाराज को प्रदान करते हैं, 1993 ऐसे कुछ है मुझे याद नहीं। तो उस समय तब से इस्कॉन के पास ये विग्रह आते हैं और महाराज उनकी सेवा को कंटिन्यू करते हैं। और फिर बाद में उनके साथ ही टेंपल का निर्माण होता है। और वास्तव में जिस प्रकार से बचपन में ही उस ज्योतिषी ने कहा था कि ये बालक गोपाल का जो स्थान है उसको पूरे विश्व में प्रकाशित करेगा, तभी भी महान विष्णु गोपाल की ग्लोरीज को सुनते हैं पूरे विश्व भर और यहाँ आके विजिट करते हैं, गोपाल जी का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे गौर गोविंद महाराज बहुत अद्भुत रूप से इस भौतिक जगत से प्रयाण करते हैं। जब वो 1996 शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, 96 ना, तो उस समय मायापुर में जा रहे थे JVC मीटिंग के लिए गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो भुवनेश्वर में अपना सारा टेंपल देखते हैं हर स्थान को, फिर यहाँ भी आते हैं गोपाल का परमिशन लेते हैं, दर्शन करते प्रार्थना करते हैं, फिर मायापुर जाते हैं। मायापुर में जब मीटिंग आदि में भाग ले रहे थे शाम के समय, वो कृष्ण कथा करते थे तो कई सन्यासी भी आके सुनते थे उनसे, हाँ JVC वगैरह, तो कई वैष्णव कई भक्त जब बैठे थे उनके कमरे में, किसी भक्त ने पूछा कि क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुके, तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भगवत लीला का वर्णन किया, ब्रज लीला जो राधा कृष्ण के दिव्य चरित्र है, क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने का प्रमुख कारण क्या है उसका वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते करते इतना अधिक भावावेश में आ गए कि और आगे वर्णन नहीं कर पाए। उसी क्षण उसी समय वो अपना मुंह बंद करते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गोपाल गोपाल कहने लगते हैं सारे भक्तों के समक्ष। उनका जो सर्वेंट है उनके हाथ में गोपाल, वो हमेशा गोपाल का चित्र कैरी करते थे जहाँ भी वो जाते थे। गोपाल के चित्र को अपने हाथ में रखते हुए गोपाल के नामों का उच्चारण करते हुए श्रीधाम मायापुर में अपने लीला या शरीर को या देह को त्याग करते हैं। इस प्रकार से ऐसे महान वैष्णव हैं श्रील प्रभुपाद के अनुयायी जिनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसका अनुराग भगवत नाम भगवत कथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति था वही अनुराग या उसी सेवा की भावना रंच मात्र हमारे हृदय में आ जाए हाँ तो हमारा जो जीवन है वो सफल हो सकता है। श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज की, श्री गदाय गिरिदान की, श्री श्रीराल गोपाल जीव के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।